सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, हम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है और वह यह है कि जो संसार हमें दिखाई देता है वह पकड़ में नहीं आता, किसी की पकड़ में कभी नहीं आया। और जब हम उसकी ओर से निराश होकर उसके स्वरूप को जानकर जीवन की घटनाओं से पाठ लेकर कुछ ऐसा ठोस चाहते हैं कि जो एक बार मिलने के बाद फिर कभी बिछुड़े नहीं, तब संतजन हमारा ध्यान परमात्मा की ओर दिलाते हैं। मुश्किल यह हो जाती है कि परमात्मा न दिखाई देता है न जानने में आता है। बड़ी भारी समस्या है, जो देखने में आता है वह पकड़ में नहीं आता, और जिसको सत्य नित्य बताया जाता है वो देखने में नहीं आता। तो जो देखने में आए मिले नहीं, और जो सदा सदा से मिला हुआ है वह दिखाई न दे, तो आदमी करे क्या? बड़ा भारी असमंजस हो जाता है। तारीफ तो हम लोगों ने खूब सुन लिया है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परमात्मा घटघटवासी है, परमात्मा सबकी देखभाल करते हैं, सबको अपना कर रखते हैं, सबको अपनी कृपा से पालते हैं, वे पतित पावन हैं, वे भक्त वत्सल हैं। अब कितना कहेंगे, कहते जाए सारी जिंदगी खत्म हो जाए, पर परमात्मा के गुणों का अंत नहीं होगा। इतना बढ़िया जो है कि जिसके समान दूसरा कोई है ही नहीं, इतना बढ़िया है परमात्मा। कैसे मालूम है? जो उसके भक्त हैं तो बताते हैं, जो उसके अनुभवी हुए उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया। अब हम क्या करें? ऐसा सोचिए कि यदि उस परम सुंदर परम प्रेमी सर्व सामर्थ्यवान को हम लोग पाना ही चाहते हैं, उनसे मिलना ही चाहते हैं, तो संत की वाणी में विश्वास करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कभी कभी किसी किसी साधक के जी में आता है कि भाई परमात्मा दिखाई देते तो हम उनको प्यार करते। संसार में अनेक व्यक्तियों से संबंध हमने जोड़ा, तो कब संबंध जोड़ा? दिखाई दिया तब संबंध जोड़ा। खिलाने से खा ले, बातचीत करने से उत्तर दे, वस्तु देने से स्वीकार कर ले, प्रेम का प्रतिदान दे, तो उनको प्यार करें, ऐसा आदमी सोचता है। परंतु संतजन यह सलाह देते हैं कि भाई देखा हुआ संसार जिससे हमने संबंध जोड़ा वह मेरे संबंध को निभा नहीं सका। यह विचार की बात है, देखा हुआ संसार जिससे हमने संबंध जोड़ा वह संसार जोड़े हुए संबंध को निभा नहीं सका। जिनको हमने माता पिता कहा था वे आज नहीं है, और जो आज हमें माता पिता कह रहे हैं उनको भी छोड़कर हम चले जाएंगे, है कि नहीं? संसार में हमने जिससे नाता रिश्ता जोड़ा, मेरा माना हुआ संबंध सदा के लिए निभ नहीं सका। इसलिए संतजन सलाह देते हैं कि देखो, परमात्मा को संसार की भांति अपनी इंद्रियों का विषय बनाने की चेष्टा मत करो। संसार की भांति बुद्धि के स्तर पर भगवान को समझने की चेष्टा मत करो। जो तुम्हारी समझ में आया और जो तुम्हारे देखने में आया वह तुम्हारा होकर रह न सका। यह तो अपना अनुभव है ना। अब कोई कहता है कि भगवान सर्वांतर्यामी हैं, घट घट बासी हैं, तो हम लोगों को सुनी हुई बात माननी पड़ी, जाना हुआ नहीं। लेकिन जो मेरे देखने सुनने समझने में आया वह अस्थायी रूप से मेरे साथ नहीं रह सका, यह बात दूसरों की कही हुई नहीं है, हमारी आपकी अपनी जानी हुई बात है। सत्संग के प्रकाश में यह बात मालूम हुई कि भाई जो देखने सुनने समझने में आता है वह मेरा होकर रह नहीं सकता। आप एक बात और देखिएगा, देखने सुनने समझने में जो संसार आया वह संसार सदा ही आपके कम मूल्य का प्रमाणित हुआ। आप उसके दृष्टा हो गए, आप उसके ज्ञाता हो गए। जो आपकी जानकारी का विषय बन सका वह कम से कम आपकी बराबरी का तो नहीं हुआ, आपका समकक्ष नहीं हुआ। वह उसका मूल्य अवश्य ही आपसे कम है। अगर ऐसा न होता तो जिस प्रकार इस एक यंत्र को हम लोग कह सकते हैं कि यह एक यंत्र है, इस प्रकार से इस यंत्र में भी यह शक्ति नहीं है कि यह कह दे कि आप वक्ता हैं। ठीक है, इतना तो फर्क है ना। तो कितना भी मूल्यवान और कितनी भी वैज्ञानिक संपत्ति से संपन्न कोई यंत्र है, कोई वस्तु है, जिसके ज्ञाता हम और आप बन सकते हैं, उससे हमारा आपका अविच्छिन्न संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह आपकी जातिका नहीं है, उससे हमारी आपकी जातीय एकता नहीं है। जातीय एकता जिससे नहीं है उससे हम नाता रिश्ता जोड़ेंगे तो कभी निभेगा नहीं। एक शरीर जिसको सबसे अधिक मूल्यवान मैंने माना, बहुत मूल्यवान माना, यह शरीर भी संसार की ही जातिका है। इस शरीर के माध्यम से संसार का सुख लिया जा सकता है, इसलिए भोग बुद्धि वाला व्यक्ति इसको बड़ा मूल्यवान मान सकता है, परंतु साधन बुद्धि वाले साधक को इसको उतना ही मूल्य देना चाहिए जितने का यह हकदार है, इससे ज्यादा मूल्य इसको नहीं देना चाहिए। क्योंकि यह भी संसार की अन्य वस्तुओं की भांति एक वस्तु है। आप सोचकर देखिए कि इस शरीर को अपना कहते कहते कितना समय बीत गया, कितना भी इसको अपना कहा उसके प्रतिउत्तर में इसने कभी आपको अपना नहीं कहा। इसको अपना कहना, इससे ममता करना, इसको खूब महत्व देना, यह मानव जीवन का लक्षण नहीं है। संतजन सलाह देते हैं कि देखो भाई, जो तुम्हारे देखने सुनने में आया वह तुमसे घटिया प्रमाणित हुआ, इसलिए उस अनमोल परमात्मा को जो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, सबसे अधिक मूल्यवान है, इस देखे सुने जाने वाली वस्तुओं की पंक्ति में उसको मत खड़ा करो। यह सोचना कि परमात्मा दिखाई देगा तो हम प्यार करेंगे, गलत है, क्योंकि अगर वह दिखाई देगा तो देखी हुई वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएगा, और देखी हुई वस्तुएं हमेशा देखने वाले से कम मूल्यवान है, तो परमात्मा को भी हम लोग कम मूल्यवान वस्तुओं के साथ शामिल न करें। और हमारे चाहने से वह हो नहीं जाएगा, लेकिन अपने में जो दुविधा रहती है परमात्मा को प्यार करने में, परमात्मा की आज्ञा मानने में, परमात्मा का विधान मानने में, परमात्मा से संबंध स्वीकार करने में, हम लोगों के भीतर एक बड़ा भारी कौतूहल हो जाता है कि भाई क्या बताएं, वह तो देखने में आता नहीं है, जानने में आता नहीं है, क्या जाने उसको हम अपना मानते ही रहें मानते ही रहें, और वह कहीं ना निकला तो यह शंका निर्मूल है। ऐसी शंका हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। अब दूसरी ओर देखो, वह स्वयं हम सब लोगों में नित्य निरंतर विद्यमान है, ऐसा अनुभवी भक्तजन कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न केवल इतना है, या तो भक्तों की वाणी सुन करके स्वीकार कर लो अथवा मत करो। न मानने से भी कोई विशेष क्षति नहीं होगी। मानव सेवा संघ सब किसी के लिए भगवान को मानना आवश्यक नहीं बताता, अनिवार्य नहीं है। आप न मानना चाहें तो बड़ी खुशी से आप स्वाधीन है, न मानने के लिए मत मानिए। हम लोगों की दशा क्या है? हम लोगों की दशा ऐसी है कि कहा जाता है कि प्रभु को अपना मान लो, तो हम कहते हैं क्या बताएं, विश्वास ही नहीं होता है, कैसे माने। और कहा जाता है कि नहीं मान सकते हो तो उनकी चर्चा छोड़ दो, तब हम क्या कहते हैं, क्या बताएं, छोड़ा नहीं जाता है, कैसे छोड़ें, अजीब दशा है। हम लोग जो अधूरे ईश्वर विश्वासी हैं, उनकी यह अजीब दशा है। मान लो तो नहीं माना जाता है, छोड़ दो तो नहीं छोड़ा जाता है, तो क्या इलाज है भाई? मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे अपने समान साधक भाई बहनों की दशा दिखाई देती है, और ऐसा मालूम होता है कि अपने में अपने को हर प्रकार से संभालने की सामर्थ्य नहीं है, तो किसी न किसी रूप में एक सामर्थ्यवान की सत्ता को मानना ही पड़ता है। क्या करें आदमी? और मानने वाले को संतजन कहते हैं कि बिना देखे बिना जाने मानो, इंद्रियों का विषय मत बनाओ, बुद्धि का विषय मत बनाओ। इससे आगे का शब्द और भी कठिन है। वह क्या है कि बिना देखे बिना जाने और बिना किसी शर्त के, उससे बिना कुछ चाहे अपने को उसके समर्पित कर दो। जानो भी मत, देखो भी मत, मांगो भी मत, और कुछ नहीं मांगोगे तो दर्शन का सुख मांग ले, ऐसा भी मत सोचना। कोई कोई साधक सोच सकता है, त्रिभुवन मोहन रूप है उनका, कोटि मनोज लजाव निहारे, ऐसा कहा है भक्तों ने। जिन भक्तों की दृष्टि खुल गई थी परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए, वे वर्णन करते करते कहते हैं, कोटि मनोज लजाव निहारे, अब आप सोचिए, एक तो मनोज का रूप ही बड़ा मोहक है, सारे संसार के जड़ चेतन सभी प्राणियों को मोह करके रखते हैं, इतने रूपवान हैं ये। और भक्त कहता है, कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों मनोज को लज्जित कर देने वाला रूप है भगवान का। कैसा होगा अपनी कल्पना में नहीं आ सकता। तो भक्तों की दृष्टि तो खुल गई, उन्होंने देख लिया। हम लोग क्या करते हैं, उस रूप को देखा तो नहीं, लेकिन संत जन कहते हैं कि यह शर्त भी मत लगाओ कि आज से मैंने अपना नाम तुम्हारे भक्तों की सूची में लिखवा लिया है, तो मैंने सुना है कि तुम्हारा रूप त्रिभुवन मोहन है, तुम सभी को मोहित कर लेते हो, करोड़ों काम देव के समान रूपवान हो, तो हे प्यारे इतना जरूर कर देना कि मैं जब पसंद करूं तो मेरे सामने वह रूप माधुरी प्रकट कर देना, मैं जब पसंद करूं। ये भी एक बात है, क्योंकि अधूरे विश्वासी साधक जो हैं, वे अकेले परमात्मा को पसंद करते नहीं हैं, हर समय परमात्मा उन्हें पसंद नहीं आते। वे तो सोचते हैं कि कभी हम खेलने जाएंगे, कभी खाने जाएंगे, कभी कमाने जाएंगे, कभी निद्रा की जड़ता में मिट्टी की तरह पड़ जाएंगे, इसलिए सब समय तो नहीं, लेकिन तो भी एक लालसा उनकी होती है कि जब मैं तुम्हें याद करूं तब अपनी रूप माधुरी लेकर मेरे सामने प्रकट हो जाया करना। तो ऐसा भी नहीं मांगना है, उनको जाने बिना, उनको देखे बिना, उन पर किसी प्रकार का शर्त लगाए बिना, उनसे कुछ चाहे बिना, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए उनके होना पसंद करते हो तो उनके हो जाओ। बड़ा कठिन है, अनेकों प्रकार की कामनाओं से भूखा प्यासा व्यक्ति भला कैसे रह सकता है बिना कुछ मांगे। तब संतजन कहते हैं कि जो कुछ भी चाहता है वह प्रभु का प्रेमी नहीं हो सकता। पहले अपने को अचाह करो, पहले सारे संसार की वासना को छोड़ो, जब तुम्हारे जीवन में उन परम सुंदर को, उन परम मधुर को रस देने के सिवाय और कोई भी बात नहीं रह जाएगी, तो तुम्हारे उस प्रेम भरे व्यक्तित्व के प्रेमी स्वयं भगवान हो जाएंगे। ऐसा किया है उन्होंने, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। और बड़े बड़े भक्त जो हुए, उन्होंने भगवान को कृपा करने के लिए भी नहीं कहा, मेरी खबर लो, ऐसा भी कभी नहीं कहा, मेरे विरोधियों को शांत कर दो, ऐसा भी कभी नहीं कहा। उनको तो हर समय इस बात का ध्यान रहा कि कैसे करके मैं उनको प्रसन्न करूं। वे प्रेमी जिन्होंने केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही जीवन धारण किया, प्रभु की दृष्टि में वे बड़े मूल्यवान हो गए, सारी सृष्टि से अधिक उनका मूल्य हो गया, और उनकी प्रसन्नता के लिए वे परम उदार हर प्रकार से अपने को उन भक्तों पर न्योछावर करने को तैयार हो गए। तो घाटा लगा कि लाभ हुआ जी, लाभ हुआ। मैंने अपनी तुच्छ वासनाओं को छोड़ा, मैंने प्रभु की दी हुई सामग्री उनको अर्पित की तो अपनी गांठ से क्या गया? कुछ नहीं। गांठ टटोल के देखो तो अपने पास अपनी बपौती कुछ है भी? कुछ नहीं है। जो है सो सब उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, भारतीय परंपरा में भी सुना है और पश्चिमीय परंपरा में भी सुना है कि भगवान ने अपने आनंद के लिए मनुष्य को बनाया। आप सोच लीजिए, दुनिया के कई ऐसे कोमल और शुद्ध चित्त के साधक हो गए जिन्होंने सुना कि भगवान ने मेरी रचना तो अपने आनंद के लिए किया था, तो सुन करके ही वे कृतकृत हो गए। अपनी उनकी कोई इच्छा नहीं रही, कोई संकल्प नहीं रहा। इतनी सी बात से उनको बड़ा आनंद आ गया था कि सृष्टि के मालिक ने मुझको अपने आनंद के लिए बनाया। वे कहते हैं, मालिक तुझे जैसे आनंद आए वैसे करो मेरे साथ। कोई कोई संतजन जो हमारे श्री महाराज जी की आंतरिक बातों को जानने के अधिकारी अपने को समझते थे, श्री महाराज जी से प्रश्न करते थे, महाराज आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रति आपका संबंध क्या है? कोई तो किशोरी जी का भक्त होता है प्रिया जी का, और कोई प्रियतम जी का भक्त होता है। स्वामी जी महाराज ने जो भाव धारण कर रखा था उसका वर्णन करते हुए एक बार कहकर सुनाया कि मैं तो प्रिया प्रीतम दोनों के खेलने का फुटबॉल हूं। यह भाव था उनका, जिधर फेंक दो फिका जाऊं। इसमें अपने को क्या मजा है? वाह, इसमें तो बड़ा मजा है। क्यों? फुटबॉल के खिलाड़ियों का सारा ध्यान, सब समय पूरी दृष्टि फुटबॉल पर ही लगी रहती है। प्रिया जी ने फेंक दिया तो प्रीतम देख रहे हैं किधर जा रहा है, और प्रीतम जी ने फेंक दिया तो प्रिया जी देख रही हैं कि किधर जा रहा है, और अपने आप उन्होंने फेंक दिया और अपने आप दोनों के दोनों उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बड़ा भारी आनंद है अपने को। यह आनंद किसका है? यह है आनंद अपने को अकिंचन बनाकर, अचाह बनाकर, सब प्रकार से प्रिया प्रियतम के आनंद पर छोड़ देने वाले वीर बहादुर दिलदार साधक का काम है। यह केवल एक दिमागी ढंग से भावना करने की बात नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने को माना और ऐसा सारा जीवन वे व्यवहार करते रहे, और इस प्रकार से प्रिया प्रीतम के प्रेम पात्र होकर उन्होंने अपने जीवन को उनके रस से भरपूर किया, और उस रस का वितरण करके हम सभी प्रेम के प्यासे साधक भाई बहन जो उनके इर्द गिर्द में फिरते रहते थे, सब लोगों को परम प्रेमास्पद के मधुर रस के आकर्षण और मिठास का आस्वादन भी करना। जो लोग नजदीक रह चुके हैं वे लोग जानते हैं इस बात को। आज इस संध्या की बैठक में अपने लिए और अपने सभी आत्मीय साधक भाई बहनों के लिए मैं यह निवेदन करती हूँ कि भाई हमारे और भगवान के बीच की दूरी जो मुझे मालूम होती है, इस दूरी का कारण कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमने उनके नित्य निरंतर अपने में ही विद्यमान रहने वाली महिमा को स्वीकार नहीं किया। नाम जपते जाते हैं, भजते जाते हैं, उनकी कथा कहकर जीवन का निर्वाह करते जाते हैं, फिर भी अपने और उनके बीच में दूरी अनुभव करते रहते हैं। बड़ी दर्द भरी दशा है। कहने के लिए कहते हैं कि परमात्मा है, मेरे गुरु ने मुझको कहा था, रामायण में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, यह सब कुछ है, लेकिन भीतर में थोड़ी थोड़ी दुख रहती है, संदेह रहता है। कहने वाले ने कहा है, लिखने वाले ने लिखा है, लेकिन मेरे लिए भाई, मेरे लिए तो अभी वह लिखा हुआ ही, सुना हुआ ही मालूम होता है। इस संदेहात्मक दशा को मिटाने के लिए हम लोगों को चाहिए कि सब प्रकार का संशय छोड़कर केवल गुरु वाणी में श्रद्धा करके, भक्त वाणी में श्रद्धा करके, वेद पुराण रामायण गीता की वाणी में श्रद्धा करके प्रभु की सत्ता में निर्विकल्प विश्वास कर लें। यह पहली बात है। बाद में क्या होता है कि आरंभ में साधक केवल बाहर से सुनकर और भीतर से परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करके मान लेता है। मानना पड़ता है आरंभ में, मानने का पुरुषार्थ मुझे करना है। प्रारंभ में जो परमात्मा केवल माना जाता है, आगे चलकर वही परमात्मा उसी साधक के लिए जाना हुआ हो जाता है। सारी जिंदगी आपको मानते रहना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हमेशा के लिए वेदवाणी भक्तवाणी का सहारा लेकर के आप मानते ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। केवल आरंभ करना पड़ता है मानने से, लेकिन जिनको हम मानते हैं वे परमात्मा स्वयं आगे चलकर मानने वाले को जना देते हैं। तो मानने का पुरुषार्थ हम करें और जना देने का दायित्व वे स्वयं पूरा करेंगे। देर नहीं लगती है, बहुत समय नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा अनुनय विनय करवाना भी उनको पसंद नहीं है। वे स्वयं परम स्वाधीन है, वे अपने भक्त को स्वाधीन देखना चाहते हैं। इसलिए मानव सेवा संघ की प्रणाली में भगवत प्राप्ति का अर्थ केवल इतना है कि आपका जीवन भगवत स्मृति से भर गया कि नहीं, भगवान आपको प्रिय लगने लगे कि नहीं, अपने आप अपने प्रिय की याद आपको आने लगी कि नहीं। तो भगवान का प्रेमी हो जाना भगवत प्राप्ति है, मानव सेवा संघ की भाषा। क्यों? इसलिए कि प्रेमी बन जाना सब वासनाओं तृष्णाओं सब विकारों को छोड़कर, जड़ जगत से नाता तोड़कर, अपनी इच्छाएं अपने संकल्पों का त्याग कर सब प्रकार से प्रभु के होकर रहना, इतना ही साधक का पुरुषार्थ है। इसके बाद उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेम के धातु में बदल जाता है और यही भगवत प्राप्ति है। इतना ही आपको करना है और शेष जो कुछ रहता है वह तो परमात्मा अपने प्रेमियों पर न्योछावर किए बिना खुद ही नहीं रह सकते हैं। उनको क्या हम लोगों की बेबसी मालूम नहीं है? खूब मालूम है, ये तो खूब जानते हैं। उनकी दृष्टि में अगर कोई मानव देखे हुए संसार को नापसंद कर देता है और बिना देखे हुए परमात्मा पर अपने को बिना किसी शर्त के छोड़ देता है तो उसकी इस बहादुरी का परमात्मा बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं। और वे जब द्रवित हो जाते हैं तो फिर क्या नहीं होता है, कोई क्या कह सकता है। उनकी करुणा, उनके प्रेम, उनकी महिमा, उनकी लीला भक्त को निहाल करती है।